नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली ऐतिहासिक वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका।
We've had a number of substantive discussions with the Iranians.
हमने ईरान के साथ बातचीत की है, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मुझे लगता है कि ईरान के लिए ये ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमेरिका लौट रहे हैं। हमने ये बहुत साफ कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या है, किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार हैं और किन बातों पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, और ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।
श्री वैंस ने कहा कि मुख्य मतभेद ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरान के समक्ष अंतिम प्रस्ताव रखा है और अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इससे पहले ईरान सरकार ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि कुछ मतभेद बने रहने के बावजूद संवाद जारी रहेगा। इस बीच एक वीडियो संदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसराइल ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में कल विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात की। इसमें क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा है कि उर्वरक संयंत्रों को आवंटित कुल गैस की मात्रा में 5% की वृद्धि की जा रही है। इससे ये 6 महीने की औसत खपत के लगभग 95% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि लगभग 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। एलपीजी लेकर भारतीय पोत जग विक्रम ने कल सुरक्षित रूप से होर्मुज क्षेत्र पार कर लिया है। इसमें 24 नाविक सवार हैं। ये लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इसके 15 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की संभावना है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रूपये कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क 29.5 रूपये से बढ़ाकर 42 रूपये कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 11 बजे सिलीगुड़ी के कावाखाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी हुगली में जनसभा करेंगे। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा, जांगीपुर और कुशमंडी में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बैनर्जी ने बानकुंडा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में जनसभाएं की। उन्होंने लोगों से टीएमसी को वोट देने का आह्वान किया। बिहार के कटिहार जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रूपये देने की घोषणा की। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल भारत के सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही भारत के 2 स्वर्ण और 4 रजत समेत कुल 14 पदक हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर पहली जीत दर्ज की। लीग में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटन्स से और शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस तथा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।